अलंकार संप्रदाय और उसके सिद्धांत। अलंकार का शाब्दिक अर्थ है सुशोभित करने वाला, या वह जिससे सुशोभित हुआ जाता है। इन दोनों अर्थों में परस्पर थोड़ा अंतर है। पहला अर्थ जहाँ अलंकार को कर्ता या विधायक सूचित करता है, वहाँ दूसरे अर्थ में वह साधन मात्र रह जाता है। काव्य शास्त्र में अलंकार इन दोनों ही अर्थों में प्रयुक्त हुआ है। जहाँ वामन आदि ने अलंकार को व्यापक अर्थ में ग्रहण करते हुए सौंदर्य के पर्यायवाची के रूप में ग्रहण किया है, वहाँ वह काव्य को सुशोभित करने वाला माना गया है। किंतु जहाँ वह संकुचित अर्थ में विशिष्ट कथन शैली के रूप में प्रयुक्त हुआ है, वहाँ वह काव्य सौंदर्य का साधन मात्र रह गया है। यहाँ भी हम इसका प्रयोग दूसरे अर्थ में ही कर रहे हैं। अलंकार संप्रदाय की परंपरा। भारतीय काव्य संप्रदायों में रस के अतिरिक्त शेष संप्रदायों में सबसे पुराना अलंकार संप्रदाय ही है। वैसे तो स्वयं भरत मुनि ने नाट्यशास्त्र में चार अलंकारों उपमा, दीपक, रूपक तथा यमक की विवेचना की है, किंतु उन्होंने इन्हें अधिक महत्व नहीं दिया। अलंकारों को काव्य की आत्मा घोषित करते हुए पृथक रूप में अलंकार संप्रदाय की स्थापना करने का श्रेय काव्यालंकार के रचयिता भामह छठी शताब्दी को ही प्राप्त है। भरत और भामह के बीच भी राम शर्मा, मेधाविन, राजमित्र आदि विद्वान हो चुके थे जिन्होंने अलंकारों की चर्चा की थी, किंतु उनके ग्रंथ अनुपलब्ध हैं। इन विद्वानों के नाम केवल भामह के ही काव्यालंकार में आए हैं। ऐसी स्थिति में अलंकार संप्रदाय के प्रवर्तक भामह ही माने जाते हैं। भामह का काव्यालंकार छह परिच्छेदों में विभाजित है, जिसमें क्रमशः काव्य शरीर निर्णय, अलंकृत निर्णय, दोष निर्णय, न्याय निर्णय और शब्द शुद्धि पर विचार किया गया है। भामह ने वक्रोक्ति को ही समस्त अलंकारों का मूल मानते हुए उनकी संख्या 38 निर्धारित की है। भामह के परवर्ती दंडी 7वीं शताब्दी ने काव्यादर्श लिखकर अलंकार संप्रदाय की परंपरा को आगे बढ़ाया। उन्होंने भामह के अलंकार विवेचन के संशोधन करते हुए अलंकारों की संख्या 35 तक ही सीमित रखी, किंतु काव्यालंकार सार संग्रह के रचयिता उद्भट 9वीं शती ने भामह का ही समर्थन करते हुए कुछ नए अलंकार और जोड़कर उस संख्या को 41 तक पहुंचा दिया। लगभग इसी समय रुद्रट ने काव्यालंकार की रचना की, जिसमें उन्होंने एक ओर तो अलंकारों का वर्गीकरण किया तथा दूसरी ओर उनकी संख्या 50 से भी अधिक निश्चित की। इतना ही नहीं, उन्होंने अलंकार संप्रदाय के अनेक परंपरागत भ्रांतियों का भी निराकरण किया, जैसे कि उनके पूर्व अनेक अलंकारवादियों ने रस भाववादी को भी अलंकार मानने की भूल की थी, जबकि रुद्रट ने इसका स्पष्ट विरोध किया। आगे चलकर अनेक आचार्यों ने अलंकारों का अपने अपने ढंग से निरूपण किया, जिसमें मम्मट काव्य प्रकाश 11वीं शती, रुय्यक अलंकार सर्वस 12वीं शती, जयदेव चंद्रालोक 13वीं शती, विद्याधर एकावली 13वीं 14वीं शती, विश्वनाथ साहित्य दर्पण 14वीं शती, केशव मिश्र अलंकार शेखर 16वीं शती, अप्पय दीक्षित कुवलयानंद 17वीं शती आदि उल्लेखनीय हैं। इनमें से मम्मट और विश्वनाथ को छोड़कर शेष सभी अलंकारवादी थे, जो कि अलंकार को ही काव्य की आत्मा मानते थे, जबकि मम्मट ध्वनि को व विश्वनाथ रस को मानते थे। रुद्रट परवर्ती युग में अलंकारों के क्षेत्र में संख्या वृद्धि की मुख्य प्रवृत्ति रही, जिसके फलस्वरूप कुबलयानंद तक पहुँचते पहुँचते उनकी संख्या लगभग 125 हो गई। संस्कृत की यह परंपरा आगे हिंदी में भी अबाध रूप से चलती रही है। प्रारंभ में मध्यकालीन कवियों ने ब्रजभाषा पद्य में शताधिक अलंकार संबंधी ग्रंथ लिखे, जिनका मौलिकता या नवीनता की दृष्टि से विशेष महत्व नहीं है, एक प्रकार से संस्कृत ग्रंथों के छायानुवाद मात्र हैं। आधुनिक युग में मुरारी दान, भगवान दीन, अर्जुन दास केडिया, कन्हैया लाल पोद्दार, रामदहन मिश्र आदि ने खड़ी बोली गद्य में अलंकारों का विवेचन किया। नवीनता इनमें भी नहीं है, किंतु फिर भी लक्षणों एवं उदाहरणों की स्पष्टता की दृष्टि से यह महत्वपूर्ण है। इस क्षेत्र में सर्वाधिक स्तुत्य कार्य डॉक्टर नगेंद्र का है, जिन्होंने संक्षेप में आधुनिक दृष्टिकोण से इनका पुनर्मूल्यांकन करते हुए पाश्चात्य काव्यशास्त्र एवं मनोविज्ञान के आधार पर इनकी उपयोगिता प्रदर्शित की है। डॉक्टर ओम प्रकाश ने भी हिंदी अलंकार साहित्य के रूप में हिंदी के अलंकार साहित्य का विवेचन प्रस्तुत किया है। हम इस प्रकार देखते हैं कि अलंकार विवेचन की परंपरा भामह से लेकर अब तक अक्षुण्ण रूप में चलती आ रही है। हाँ, उसका महत्व अवश्य सर्वदा एक सा नहीं रहा है। अलंकार परिभाषा एवं स्वरूप। यद्यपि हमने आरंभ में अलंकार शब्द की विवेचना कर दी है, किंतु अलंकारों के स्वरूप को सम्यक रूप में ग्रहण करने की दृष्टि से वह पर्याप्त नहीं है। सौंदर्य के उपादान एवं साधन के रूप में अनेक तत्वों का प्रयोग हो सकता है, किंतु वे सभी अलंकार के क्षेत्र में नहीं आते। अलंकार का सामान्य अर्थ है आभूषण। आभूषण जिस प्रकार शरीर के अंग नहीं है, ऊपर से धारण किए जाने वाले पदार्थ हैं, ठीक उसी प्रकार काव्य में भी अलंकार मूल विषय वस्तु के अंग न होकर उनकी शैली से संबंधित तत्व है। संक्षेप में, हमारे विचार से अलंकार कथ्य न होकर कथन शैली के विशिष्ट प्रकार मात्र हैं, किंतु अलंकारवादी ऐसा नहीं मानते। उनकी धारणाएं इस प्रकार हैं। क भामह, काव्य के रूपक आदि अलंकारों का अन्य आचार्यों ने अनेक प्रकार से वर्णन किया है। स्त्री का सुंदर मुख भी बिना आभूषण के नहीं सजता। ख दंडी, काव्य के सौंदर्य कारक धर्मों को अलंकार कहते हैं। ग जयदेव, जो अलंकार शून्य शब्दार्थ में भी काव्यत्व स्वीकार करते हैं, वे चतुर मनुष्य अग्नि में भी अनुष्णता को स्वीकार करें, अर्थात उष्णता का जो संबंध अग्नि से है वही अलंकार का काव्य से है। उपर्युक्त उक्तियों में अलंकार को काव्य का स्थिर एवं अनिवार्य तत्व माना गया है, जबकि वामन, मम्मट, विश्वनाथ प्रभृति आचार्यों ने इसका खंडन किया है। साथ ही उन उक्तियों से अलंकार के स्वरूप का भी स्पष्टीकरण नहीं होता। आधुनिक युग में आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अलंकारों के स्वरूप के स्पष्ट रूप में मीमांसा करते हुए लिखा है, उद्धरण चिन्ह, वस्तु या व्यापार की भावना चटकीली करने और भाव को अधिक उत्कर्ष पर पहुंचाने के लिए कभी किसी वस्तु का आकार या गुण बहुत बढ़ा कर दिखाना पड़ता है, कभी उसके रूप रंग या गुण की भावना को उस प्रकार के और रूप रंग मिलाकर तीव्र करने के लिए समान रूप और धर्म वाली वस्तुओं को सामने करना पड़ता है, कभी कभी बात को घुमा फिरा कर भी कहना पड़ता है। इस तरह के भिन्न भिन्न विधान और कथन के ढंग अलंकार कहलाते हैं। अलंकार और अलंकार्य का अंतर। भारतीय काव्यशास्त्रियों ने साहित्य में अलंकार और अलंकार्य में परस्पर अंतर माना है। उन्होंने वर्णनीय वस्तु को अलंकार्य तथा वर्णन शैली या शैलीगत विशेषताओं को अलंकार बताया है। जैसे मुखचंद्र में मुख अलंकार्य है जबकि चंद्र अलंकार है, किंतु आधुनिक युग के अनेक पाश्चात्य विद्वान इस धारणा का खंडन करते हैं। क्रोचे का कहना है कि अलंकार और अलंकार्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही हैं। उनका तर्क है, वन कैन आस्क वन सेल्फ हाउ एन ऑर्नामेंट कैन बी ज्वाइन टू एक्सप्रेशन एक्सटर्नली, इन दैट केस इट मस्ट ऑलवेज रिमेन सेपरेट इंटरनली, इन दैट केस आइदर इट डज नॉट असिस्ट एक्सप्रेशन एंड मार्स इट, और इट डज फ्रॉम पार्ट ऑफ इट एंड इज नॉट एन ऑर्नामेंट बट अ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट ऑफ एक्सप्रेशन इनडिस्टिंग्विशेबल फ्रॉम द होल। अर्थात यह पूछा जा सकता है कि उक्ति में अलंकार का समावेश कैसे हो सकता है। बाहर से तब तो फिर वह सदा ही उक्ति से पृथक रहेगा, यदि भीतर से तो उस दशा में वह या तो उक्ति का साधक न होकर बाधक हो जाएगा या फिर उसका अंग बनकर अलंकार ही न रह जाएगा। उस स्थिति में वह उक्ति का ही अंग बनकर उससे सर्वथा अभिन्न हो जाएगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि सच्चे काव्य में वस्तु और अलंकार मिलकर एकाकार हो जाते हैं, उन्हें अलग अलग कर देने पर काव्य का सौंदर्य नष्ट हो जाता है, किंतु फिर भी वस्तु और अलंकार का भेद मिटाया नहीं जा सकता। पानी में लाल रंग घुलकर एकाकार हो जाता है, किंतु इसी से हम यह नहीं कह सकते कि पानी और लाल रंग दोनों एक ही होते हैं। अतः क्रोचे का तर्क हमें निस्सार प्रतीत होता है। अलंकारों का वर्गीकरण। जैसा कि आरंभ में कहा जा चुका है, भारतीय आचार्यों ने अलंकारों के शताधिक भेद किए हैं, जिन्हें स्थूल रूप में 6-7 श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है। इन श्रेणियों के संबंध में भी आचार्यों में परस्पर थोड़ा मतभेद रहा है। यहाँ रुद्रट ने वास्तव, औपम में अतिशय और श्लेष ये 4 श्रेणियाँ मानी हैं। वहाँ रुय्यक ने निम्नांकित 7 श्रेणियाँ निश्चित की हैं, सादृश गर्भ, 2 विरोध मूलक, 3 श्रृंखलाबद्ध, 4 तर्क न्याय मूलक, 5 वाक्य न्याय मूलक, 6 लोक न्याय मूलक, 7 गूढ़ार्थ प्रतीति मूलक। परवर्ती विद्वानों ने ही प्रायः इसी वर्गीकरण को स्वीकार किया है, अतः यहाँ इसका संक्षिप्त परिचय देना उपयोगी सिद्ध होगा। 1 सादृश्य गर्भ। इनमें वस्तु और अलंकार के उपमेय और उपमान के गुण धर्म आदि में किसी न किसी प्रकार से सादृश्य दिखाकर मूल भाव के प्रभाव की वृद्धि की जाती है। इस वर्ग में उपमा, रूपक, उत्प्रेक्षादि अलंकार आते हैं, जिनकी संख्या पंडित रामदहन मिश्र ने 28 मानी है। 2 विरोध मूलक। इनमें वस्तु और अलंकार के गुणधर्मों में वैषम्य या विरोध की प्रमुखता रहती है। इस वर्ग में विरोध, विभावना, विशेषोक्ति आदि 12 अलंकार गिने जाते हैं। 3 श्रृंखलाबद्ध। इनमें विषय वस्तु को क्रम या श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करके सौंदर्य प्रस्तुत किया जाता है। जिस प्रकार कमरे में बिखरी हुई वस्तुओं को एक क्रम से सजा देने पर उनकी शोभा बढ़ जाती है, वैसे ही श्रृंखलाबद्ध अलंकारों से काव्य सौंदर्य में वृद्धि होती है। इसमें कारणमाला, एकावली आदि अलंकार आते हैं। 4. तर्क न्याय मूलक। न्यायशास्त्री तर्क अनुमान आदि के द्वारा उक्ति को प्रभावशाली बनाया जाता है। 5. वाक्य न्याय मूल, जिससे तर्कपूर्ण सामान्य उक्ति या वाक्य के द्वारा वस्तु को प्रभावशाली बनाया जाता है। 6. लोक न्याय मूल, जिसमें लोक व्यवहार या नीति के तत्वों के द्वारा उक्ति में प्रभाव उत्पन्न किया जाता है। 7. गूढ़ार्थ प्रतीति मूल, इसमें मुख्यतः व्यंजना शक्ति का व्यवहार रहता है। इस वर्गीकरण के संबंध में डॉक्टर नगेंद्र का मत है, उद्धरण चिन्ह, उपर्युक्त कोई भी वर्गीकरण सर्वथा संगत नहीं है। साधर्म और अतिशय का आधार यदि मनोवैज्ञानिक है तो वाक्य न्याय आदि में स्वयं अलंकारों का स्वरूप निर्धारण की किसी निश्चित आधार को लेकर नहीं चलता। उसका आधार शैली की सीमा को लांघ कर वस्तु तक ही नहीं, वरन न्याय, दर्शन, वाणी और क्रिया तक फैल गया है। स्वभावतः ही मनोविज्ञान के प्रकाश में साहित्य का अध्ययन करने वाले आज के आलोचक का इनसे परितोष होना कठिन है। उद्धरण चिन्ह बंद। इस संबंध में हमारा निवेदन यह है कि अलंकारों का उपर्युक्त वर्गीकरण पूर्णतः संतोषजनक तो नहीं है, किंतु वह उतना अनर्गल भी नहीं है। न्याय शब्द के कारण ऐसा प्रतीत होता है कि कदाचित इन अलंकारों का संबंध न्याय शास्त्र या दर्शन शास्त्र से होगा, जबकि वास्तविकता यह नहीं है। न्याय शास्त्र के एक भाग में तर्क विद्या संबंधी विवेचन है। यह एक तथ्य है कि कोई बात जब तर्क संगत ढंग से कही जाती है तो वह प्रायः प्रभावशाली हो जाती है। इसी से न्याय व तर्क संबंधी कुछ तत्वों को भी आचार्यों ने अलंकारों में स्थान दे दिया है, जो आधुनिक मनोविज्ञान की दृष्टि से भी अनुचित नहीं है। इसी प्रकार लोक व्यवहार संबंधी कुछ बातें भी कई बार वाणी की साथ सज्जा में उपयोगी होती हैं। अतः इन सबको अपनाकर अलंकारवादियों ने इस प्रकार से कथन शैली की समृद्धि एवं वैभवशालिता के ही मार्ग का दिग्दर्शन कराया है। अलंकारों के भेद। मुख्यतः अलंकारों के भेद हैं शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकारों में अलंकार का सौंदर्य केवल किसी शब्द विशेष की ध्वनि और अर्थ पर आश्रित होता है, जो शब्द को बदल देने पर लुप्त हो जाता है। इसके विपरीत अर्थालंकारों का संबंध पूरे वाक्य के अर्थ में होता है। शब्दालंकारों के अनेक उपभेद किए गए हैं, जैसे अनुप्रास, यमक, वक्रोक्ति, श्लेष आदि। अनुप्रास में किसी वर्ण या अनेक वर्णों की आवृत्ति होती है। वस्तुतः अनुप्रास का सौंदर्य आवृत्ति पर ही आश्रित है। इसके कुछ उदाहरण द्रष्टव्य हैं। क, लपट से झट रूख जले जले, नव नदी घट सूख चले चले। ख, तरण के ही संग तरल तरंग से, तरण डूबी थी हमारी ताल में। ग, रस सिंगार मंजन किए, कंजनु भंजन उदयन, अंजन रंजन हु बिना, खंजनु भंजन उदयन। अनुप्रास से ही मिलता जुलता यमक है। इसमें निरर्थक या भिन्नार्थक वर्णों की पुनरावृत्ति होती है, जैसे सुन कपे जग में बसवीर के, सुयश कारण कारण मुख्य है। यहाँ कारण और कारण की आवृत्ति में यमक है। वक्रोक्ति में किसी बात का अर्थ काकु या श्लेष से बदल दिया जाता है, जैसे मैंने कहा प्रिय जाओ मत बैठो, वह भोली समझी कि जाओ मत बैठो। श्लेष अलंकार में एक ही शब्द को दो या उससे अधिक अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है, यथा पानी गए न उबरे, मोती मानुष चून। यहाँ पानी के क्रमशः तीन अर्थ हैं, कांति, प्रतिष्ठा और जल। इसी प्रकार शब्दालंकारों के और भी अनेक भेद हैं, जो विशेष महत्वपूर्ण नहीं है। अब अर्थालंकारों को लीजिए। जैसा कि हमने पीछे बताया है, अर्थालंकारों को 7 वर्गों में विभाजित किया जाता है तथा उनकी कुल संख्या शताधिक है। यहाँ केवल कुछ महत्वपूर्ण अलंकारों का ही उदाहरण परिचय दिया गया है। क, उपमा सबसे अधिक महत्वपूर्ण अलंकार है। कुछ आचार्यों ने तो केवल इसे ही अलंकार माना है, शेष सबको उपमा के ही भेदों में ही गिना है। उपमा में वर्ण वस्तु का सादृश्य किसी अन्य वस्तु से बताया जाता है। इसके सामान्यतः 4 अंग माने जाते हैं, 1 उपमेय अर्थात वर्ण वस्तु, 2 उपमान जिससे सादृश्य बताया जाता है, 3 धर्म दोनों वस्तुओं का सामान्य गुण, 4 वाचक वह शब्द जिससे दोनों की तुलना का बोध होता है। जहाँ ये चारों अवयव विद्यमान हो उसे पूर्णोपमा कहते हैं, अन्यथा उसे उपमा ही कहते हैं। इसका एक उदाहरण द्रष्टव्य है। तापस बाला सी गंगाकल, शशमुख से दीपित मृदुकरतल, लहरें उर पर कोमल कुंतल। यहाँ गंगा उपमेय है, तापस वाला उपमान है, कल यानी सौंदर्य सामान गुणधर्म है तथा सी वाचक शब्द है। अस्तु यह पूर्ण उपमा है। उपमा के कतिपय अन्य उदाहरण हैं। 1, कहो कौन हो दमयंती सी, तुम तरुके नीचे सोई, हाय तुम्हें भी त्याग गया क्या अलिनलसा निष्ठुर कोई। 2, पड़ी थी बिजली सी विकराल, लपेटे थे घन जैसे बाल, कौन छेड़े ए काले सांप, अवनिपति उठे अचानक कांप। ख, रूपक इसमें उपमेय और उपमान का केवल सादृश्य ही नहीं दिखाया जाता, अपितु दोनों को एक ही बना दिया जाता है, या यूं कहिए कि उपमेय को उपमान का ही रूप दे दिया जाता है। जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पनघट में डुबो रही ताराघट उषा नागरी। यहाँ अंबर को पनघट, तारों को घट तथा उषा को नागरी का रूप दे दिया गया है। इसमें ही भेद होते हैं। जहाँ रूपक उपर्युक्त उदाहरण की भांति समस्त अवयवों के साथ हो तो उसे सावयव रूपक कहते हैं, किंतु जहाँ सब अवयव न हो उसे निरवयव रूपक कहते हैं। निरवयव रूपक का एक उदाहरण देखिए। ओ चिंता की पहली रेखा, अरे विश्ववन की व्याली। यहाँ चिंता को व्याली का रूप तो दे दिया गया है, किंतु व्याली के विभिन्न अवयवों का चित्रण नहीं किया गया। ग उत्प्रेक्षा। उत्प्रेक्षा की स्थिति उपमा और रूपक के बीच की होती है। इसमें न तो उपमा की भांति उपमेय और उपमान का केवल सादृश्य बताया जाता है और न ही रूपक की भांति दोनों को एकाकार कर दिया जाता है। इसमें केवल उपमान की संभावना या कल्पना मात्र की जाती है। देखिए उपमा, मुख चांद सा सुंदर है। रूपक, मुख चंद्र के सौंदर्य का क्या कहना। उत्प्रेक्षा, मुख मानो चांद है। उत्प्रेक्षा के भी अनेक भेद किए गए हैं, जैसे वस्तुत्प्रेक्षा, हेतुत्प्रेक्षा, फलोत्प्रेक्षा आदि। इनमें क्रमशः विषय वस्तु, कारण या परिणाम के सादृश्य की कल्पना की जाती है। जैसे एक वस्तुत्प्रेक्षा, इसके अनंतर अंक में रखे हुए सुस्नेह से शोभित हुए इस भांति वह निर्जीव पति के देह से, मानो निदाघारंभ में संतप्त आतप जाल से छादित हुई विपिन स्थली नवपतित किंशुकशाल से। मैथिली शरणगुप्त। दो हेतुत्प्रेक्षा, मोर मुकुट की चंद्रकनियो राजत नंद, मनुष्य शेखर को अकस्कीय शेखर सतचंद। बिहारी। तीन फलोत्प्रेक्षा, नाना सरोवर खिले नव पंकजों को वे अंक में विहंसते मनमोहते थे, मानो प्रसार अपने शतसह करों को वे मांगते शरद से विभूतियां थे। हरियाद। घ अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति में प्रस्तुत विषय का निरूपण इस तरह से किया जाता है कि वह वास्तविकता से बहुत दूर चला जाता है। इसके भी अनेक भेद किए गए हैं, जैसे रूपकातिशयोक्ति, भेदकातिशयोक्ति, असंबंधातिशयोक्ति, कारणातिशयोक्ति आदि। यहाँ इनके कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं। एक रूपकातिशयोक्ति, बांधा है विधु को किसने देखो काली जंजीरों से, मणि वाले फणियों का मुख क्यों भरा हुआ है हेरों से। प्रसाद। दो भेदकातिशयोक्ति, अनियारे दीरक त्रिगनी कितिन तरुणी समान, वह चितवनी औराय कछु जही बस होत सुजान। बिहारी। तीन असंबंधातिशयोक्ति, औषधालय भी अयोध्या में बने तो थे सही, किंतु उनमें रोगियों का नाम तक भी था नहीं। रामचरित उपाध्याय। चार कारणातिशयोक्ति, मैं जब ही तोलने का करती उपचार स्वयं तुल जाती हूँ, भुजलता फंसा कर नर तरुसे झूले सी झोंके खाती हूँ। अंग दीपक। इसमें उपमेय और उपमान दोनों के एक से गुणों का आख्यान होता है। जैसे काह के केहु घटाओ घटे नहीं सागर अगुण आगर प्राण। प्रतिवस्तुपमा। इसमें भी दीपक की भांति उपमेय और उपमान के समान गुणों की चर्चा होती है, किंतु दीपक में दोनों के लिए एक ही शब्दों का प्रयोग होता है, जबकि इसमें अलग अलग शब्दों का प्रयोग किया जाता है। देखिए सिंह सुता क्या कभी स्यार से प्यार करेगी, क्या पर नर का हाथ कुल स्त्री कभी धरेगी। छह व्यतिरेक। यहाँ उपमेय को उपमान से भी अधिक उत्कृष्ट बताया जाए, उसे व्यतिरेक कहा जाता है। उदाहरण, स्वर की तुलना उचित ही है, किंतु वह सुर सरिता कहाँ सरयू कहाँ, वह मरों को मात्र पार उतारती, यह यहीं से जीवों को तारती। ज समासोक्ति। समासोक्ति, इसमें प्रस्तुत वर्णन के द्वारा अप्रस्तुत अर्थ ध्वनित किया जाता है। जैसे चांदनी के संबंध में कबीर पंथ की निम्नांकित पंक्तियाँ, जग के दुखदैन शयन पर वह रुगणा बाला, रे कब से जाग रही वह आंसू की नीरव माला, पीली पर निर्बल कोमल देह लता कुमलाई, विवसना लाज में लिपटी सांसों में शून्य समाई। झ व्याज स्तुति। जहाँ स्तुति के रूप में निंदा या निंदा के रूप में स्तुति की जाए। उदाहरण, आप तो बहुत बड़े बलवान हैं, यह बच्चा भी आपसे डरता है। अंग विरोधाभास। जहाँ मूलतः विरोध न होते हुए विरोध का आभास हो। उदाहरण, तुम मांसहीन तुम रक्तहीन हे अस्थिशेष तुम अस्थिहीन, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा केवल हे चिर पुराण हे चिर नवीन। ट काव्यलिंग। जहाँ कारण बताकर कोई बात सिद्ध की जाए, जैसे श्याम गौर किमि कहो बखानी, गिरा अनयन नयन बिनु बानी। इसके अतिरिक्त अलंकारों के और अनेक भेद हैं, जिनकी चर्चा यहाँ स्थानाभाव के से संभव नहीं। अलंकारों का मनोवैज्ञानिक दृष्टि से महत्व। प्रायः यह कहा जाता है कि अलंकारों के प्रयोग से भाषा में कृत्रिमता आती है, किंतु वास्तविकता यह नहीं है। यदि वैज्ञानिक दृष्टि से विचार करें तो यह ज्ञात होगा कि अलंकार न केवल काव्य भाषा के लिए अपितु लोक व्यवहार की सामान्य भाषा के लिए ही आवश्यक है। इतने ही नहीं, असभ्य से असभ्य या सर्वथा निरक्षर भट्टाचार्य की वाणी में भी हमें अलंकारों के अस्तित्व के प्रमाण मिलते हैं। जब सामान्य लड़ाई झगड़ों में अशिक्षित लोग परस्पर गालियां देते हैं या अपने शत्रु को कहते हैं तुम्हें पीस डालूंगा या तुम्हारी चमड़ी उधेड़ दूंगा, तो वहां अतिशयोक्ति अत्युक्ति आदि का ही प्रयोग समझना चाहिए। इस प्रकार के प्रयोग करने वाला निश्चित रूप से जानता है कि वह जो कुछ कह रहा है वैसा कर नहीं पाएगा, किंतु फिर भी वह ऐसा कहता है। क्यों? वस्तुतः वह अपने क्रोध की पूर्ण अभिव्यक्ति के लिए ही ऐसा करता है। इसी प्रकार अन्य भावों प्रेम वात्सल्य घृणा आदि में भी भाषा का प्रयोग अलंकारमय रूप में करते हैं। वास्तव में भावोद्वेलित हृदय से जो शब्द स्फुरित होते हैं उनकी न केवल शब्दावली और अर्थ में भिन्नता आ जाती है अपितु उस समय वक्ता के लहजे उच्चारण तथा उसकी मुखाकृति आदि में भी विकार आ जाता है। यही विचार सुंदर भावों या सुंदर प्रसंगों से संबद्ध होकर उसी प्रकार आकर्षक एवं प्रभाव उत्पादक बन जाता है जिस प्रकार रमणी की प्रत्येक चेष्टा हाव का सौंदर्य प्राप्त कर लेती है। अस्तु, इसमें कोई संदेह नहीं कि भावों की प्रेरणा से उच्चरित भाषा में विकृति या अलंकृति का आना सर्वथा स्वाभाविक है। इतना ही नहीं, यदि कोई व्यक्ति क्रोध या प्रेम व्यक्त करते समय भी अपनी बात सामान्य ढंग से ही सामान्य लहजे में करता है तो वह अस्वाभाविक होगा तथा उसके क्रोध या प्रेम पर संदेह होने लगेगा। सच्चे कवि भावाभिव्यक्ति से प्रेरित होकर सहज स्वाभाविक रूप में ही अलंकारों का प्रयोग करते हैं, या यूँ कहना चाहिए कि उनसे प्रयोग हो जाता है। किंतु कई बार चमत्कारवादी कवि बिना भाव की प्रेरणा से ही चेष्टापूर्वक अपने भाव को अलंकृत करने का प्रयास करते हैं। ऐसी स्थिति में अवश्य ही उसकी भाषा कृत्रिम एवं अस्वाभाविक हो जाती है, जो स्तुत्य नहीं है। यहाँ एक प्रश्न उठता है कि यदि अलंकार स्वतः ही भाषा में आ जाते हैं तो फिर उनकी विवेचना एवं शिक्षा से क्या लाभ? क्या कवियों को अलंकार की शिक्षा देने से उनकी भाषा कृत्रिम नहीं हो जाएगी? इसके उत्तर के लिए हमें थोड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए। यह एक तथ्य है कि हम अपने भावों की अभिव्यक्ति भी उसी माध्यम से सफलतापूर्वक एवं स्वाभाविकता के साथ कर सकते हैं जिसे हमने पहले से अर्जित कर रखा है। भाषा का जो रूप एवं स्तर हम सीख लेते हैं भाव अभिव्यक्ति के समय भी वही प्रयुक्त होता है। जहाँ एक असंस्कृत व्यक्ति अपना क्रोध व्यक्त करने के लिए किसी का पिता या बहनोई बन जाना आवश्यक समझता है, वहाँ दूसरा व्यक्ति जो कि सुशिक्षित एवं सुसंस्कृत है केवल दुष्ट कहकर ही संतुष्ट हो जाता है। अतः भाषा एवं व्यवहार के जिस स्तर से हम अभ्यस्त हो जाते हैं वही हमारे लिए सामान्य एवं स्वाभाविक बन जाता है। यही बात अलंकारों पर लागू होती है। जिसने पहले से अलंकारों का पूर्णतः ज्ञान प्राप्त एवं अभ्यास कर लिया हो वह भावाभिव्यक्ति के समय भी उनका प्रयोग सहज स्वाभाविक रूप में कर सकेगा। जैसे कि एक अभ्यस्त टाइपिस्ट दूसरों से बात करता हुआ भी सहज स्वाभाविक रूप से अपनी गति बनाए रखता है, या एक अच्छा साइकिल चलाने वाला साथी से बातें करता हुआ भी पूरी रफ्तार के साथ दौड़ सकता है। किंतु जो आग लगने पर कुआं खोदते हैं वे पानी का इच्छित उपयोग नहीं कर पाते। अस्तु, हमारे विचार से अलंकारों के प्रयोग के लिए भावों की प्रेरणा के साथ साथ उनका पूर्व अभ्यास भी अपेक्षित है। यह अभ्यास पूर्व कवियों की रचनाओं के सूक्ष्म अध्ययन से भी किया जा सकता है। अब पाठक की दृष्टि से भी अलंकारों के मनोवैज्ञानिक आधार पर विचार किया जा सकता है। भारतीय आचार्यों ने अलंकारों के मनोवैज्ञानिक आधार पर विचार किया जा सकता है। भारतीय आचार्यों ने अलंकारों का निरूपण करते हुए मुख्यतः आवृत्ति सादृश्य अतिशयोक्ति वक्रोक्ति क्रम आदि को ही आधार बनाया है। अनुप्रास यमक आदि शब्दालंकारों में आवृत्ति का ही सौंदर्य होता है। जो ध्वनि सामान्यतः उपेक्षणीय होती है वही बार बार की आवृत्ति से सुंदर एवं आकर्षक बन जाती है। उदाहरण के लिए चर्र चर्र करने वाला खिलौना या सी सी करने वाली सीटी के प्रति बच्चे इतने आकर्षक हो जाते हैं कि वे मीठी गोलियों को ठुकराकर भी नहीं लेना पसंद करेंगे। खिलौने या सीटी में आवृत्ति का जो सौंदर्य है उसी का विकसित रूप अनुप्रासादी में मिलता है। अर्थालंकारों में उपमा रूपक आदि का मूलाधार सादृश्य है। प्रश्न है, केवल सादृश्य से उक्ति में सौंदर्य की सृष्टि कैसे होती है? इसके उत्तर में हम कहेंगे कि कोरे सादृश्य से सौंदर्य उत्पन्न नहीं हो सकता। उदाहरण के लिए हम कहें कि उर्मिला सीता सी सुंदर है या काजल कोयले सा काला है, तो इससे उक्ति में कोई आकर्षण नहीं आ पाएगा। वस्तुतः सादृश्य मूलक अलंकारों में भी हीन वस्तु को किसी अन्य महत्वपूर्ण वस्तु के सदृश बताकर ही उसके महत्व में अभिवृद्धि की जाती है। इस बात को और अधिक स्पष्ट करने के लिए हम कुछ सामान्य सौंदर्य प्रसाधनों का उदाहरण दे सकते हैं। नेत्र पहले से काले होते हैं, अतः उनमें काजल लगाया जाता है, जबकि लाल ओठों की लालिमा की अतिरंजना के लिए लिपस्टिक लगाया जाता है। कल्पना कीजिए यदि इस क्रम को उलट दिया जाए, यानी काजल ओठों पर तथा लाली आँखों में लगा ली जाए तो क्या होगा। वस्तुतः वहाँ सादृश्य का लोप हो जाएगा। ठीक इसी प्रकार अलंकारों में सादृश्य और अतिरंजना दोनों का समन्वय होना चाहिए। श्रृंखला मूलक अलंकारों में क्रम का सौंदर्य होता है, जबकि तर्क न्याय मूलक तथा लोक न्याय मूलक आदि में औचित्य का। कोई भी वस्तु ठीक क्रम से या उचित ढंग से प्रस्तुत होने पर सुंदर लगती है। कमरे की बिखरी हुई पुस्तकों को क्रम से लगा दीजिए, देखिए उससे कमरे की कितनी शोभा बढ़ जाती है। अस्तु हम कह सकते हैं कि अलंकारों के उपयुक्त आधार सर्वथा मनोवैज्ञानिक हैं। बाकी यदि कोई अनुचित रूप से उनका प्रयोग करें तो इसमें अलंकारों का क्या दोष। उपसंहार। अंत में हम कह सकते हैं कि अलंकारों का निश्चित रूप से काव्य में महत्व है। उनसे भावों की स्पष्ट एवं उचित रूप में अभिव्यक्ति और उक्ति के प्रभाव में वृद्धि होती है तथा वे श्रोता के मन को आकर्षित एवं आंदोलित करते हैं। किंतु यह सब कुछ तभी होता है जबकि उनके पीछे भावों की प्रेरणा हो। अलंकारों के लिए अलंकार का प्रयोग सफल नहीं होता। इसके अतिरिक्त जैसा कि हमने ऊपर स्पष्ट किया है, अलंकारों के प्रयोग के लिए पूर्वाभ्यास की भी अपेक्षा है। प्रायः यह कहा जाता है कि आज का युग अलंकारों का युग नहीं है, अतः काव्य से भी अलंकारों का बहिष्कार होना चाहिए। किंतु इस तर्क का आधार ही खोखला है। क्या सचमुच ही आज का युग अलंकार का युग नहीं है? क्या आज विभिन्न प्रकार के सौंदर्य प्रसाधनों, विभिन्न फैशन के वस्त्राभूषणों, रंग बिरंगे पाउडर, लिपस्टिक आदि का प्रयोग नहीं होता? वस्तुतः अलंकारों का रूप बदल गया है, किंतु अलंकार की मूल भावना आज ही मनुष्य में ज्यों की त्यों विद्यमान है। अलंकारों की प्रशंसा के साथ साथ हम यह भी स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि अंततः अलंकार अलंकार ही हैं। अलंकार के लिए हम अपने नाखून तो कटवा सकते हैं, किंतु यदि कोई अंगुलियां कटाने के लिए कहे तो हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे। दूसरे शब्दों में अलंकार काव्य की आत्मा नहीं है, काव्य का शरीर भी नहीं है, वे केवल उसके बाह्य पक्ष को सुसज्जित करने के साधन मात्र हैं। अलंकारों से कुरूप को सुंदर नहीं बनाया जा सकता, केवल सुंदर के ही सौंदर्य को बढ़ाया जा सकता है। ठीक वैसे ही यदि कवि के पास अनुभूतियों का संचित कोष है तो अलंकार भी उसकी वैभव वृद्धि में योग दे सकते हैं, अन्यथा कोरे अलंकारों की पूंजी से कोई व्यक्ति कवि नहीं बन सकता। इस प्रकार अलंकार संप्रदाय उसके सिद्धांत शीर्षक यह निबंध यहीं पर समाप्त होता है।